नमः ॐ विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। गुणाभिमानिनो देवा सर्गादिषु अस्य यद् भयात् वर्तन्ते अनुजुगम् येषां वशे एतत् चरा अचरम्। गुणाभिमानिनो देवा सर्गादिष्वस्य यद् भयात् वर्तन्ते नुजुगम् येषां वश एतत् चराचरम्। गुणाभिमानिनो देवा सर्गादिष्वस्य यद् भयात् वर्तन्ते नुजुगम् येषां वश एतत् चराचरम्। गुणाभिमानिनो देवाः सर्गादिष्वस्य यद् भयात् वर्तन्ते नुजुगम् येषां वश एतत् चराचरम्। गुणाभिमानिनो देवा सर्गादिष्वस्य यद् भयात् वर्तन्ते नुजुगम् येषां वश एतत् चराचरम्।
अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद, भगवान के भय से ही प्रकृति के गुणों के अधिष्ठाता देवता सृष्टि पालन तथा संहार का कार्य करते हैं। इस भौतिक जगत की प्रत्येक निर्जीव तथा सजीव वस्तु उनके ही अधीन है। तात्पर्य, प्रकृति के तीनों गुण सतो रजो तथा तमोगुण तीन देवों के अधीन हैं। ये हैं ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव। भगवान विष्णु सत्वगुण का, ब्रह्मा रजोगुण का तथा शिव जी तमोगुण का भार संभालते हैं। इसी प्रकार से अन्य अनेक देवता हैं जिनके अधीन वायु विभाग, जल विभाग, बादल विभाग हैं। जिस प्रकार किसी सरकार में तमाम विभाग होते हैं, उसी तरह इस संसार में भगवान के राज्य सरकार में अनेक विभाग हैं, और ये सारे विभाग भगवान के भयवश ठीक से चलते हैं। निसंदेह देवता ही इस ब्रह्मांड के भीतर समस्त जड़ तथा जंगम पदार्थ का नियंत्रण करते हैं, किंतु इन सबके ऊपर का परम नियामक भगवान है। अतः ब्रह्म संहिता में कहा गया है, ईश्वरः परमः कृष्णः। निसंदेह इस ब्रह्मांड में विभागीय प्रबंध के अनेक नियंता हैं, किंतु परम नियामक तो कृष्ण ही हैं। प्रलय भी दो प्रकार का होता है। एक प्रलय तो वह है जब ब्रह्मा रात्रि में सो जाते हैं, और दूसरा वह जब ब्रह्मा का विनाश हो जाता है। तब तक ब्रह्मा मर नहीं जाते, जब तक ब्रह्मा मर नहीं जाते तब तक सृष्टि पालन तथा संहार का काम विभिन्न देवताओं द्वारा परमेश्वर की अध्यक्षता में चलता रहता है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।
काल के द्वारा यह है, इसका वर्णन भगवान कपिल देव कर रहे हैं। गुणाभिमान इनो देवा, गुणों के नियंता देवता हैं। प्रकृति के तीन गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो इनके नियंता क्रमशः भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और भगवान शिव हैं, और इसके साथ ही ब्रह्मा जी के जीवन काल में और भी अनेक देवता हैं जो इस विश्व व्यवस्था को देखते हैं। श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार यहाँ किसी देश में या किसी राज्य में सरकार के अनेक विभाग होते हैं, उसी प्रकार इस विश्व ब्रह्मांड की सरकार में अनेक विभाग हैं, और अनेक देवता इसको संभालते हैं। गुणाभिमानिनो देवा, गुणाभिमानी का अर्थ, अभिमानी का अर्थ है कंट्रोल करने वाले या उसके अनुसार कार्य करने वाले। रजोगुण के नियंता ब्रह्मा जी हैं, और ब्रह्मा जी के अधीन अनेक देवता हैं जो उस डिपार्ट में काम करते हैं, विश्व की सृष्टि करने में मदद करते हैं। और इसके साथ ही भगवान विष्णु जो सत्वगुण के नियंता हैं, इस विश्व के पालन में भी अनेक देवताओं का सहयोग होता है। सबके बाद परम ईश्वर, परम नियंता भगवान कृष्ण हैं, और उनके अधीन अनेक नियंता हैं, अनेक कंट्रोलर हैं। ये सब भगवान के अधीन हैं। जिनके अधीन यह सारा विश्व है, चर और अचर, जैसा बसे एतत चराचरम, जिनके बस में चर अचर सभी जीव हैं, वे देवता भगवान के अधीन रहकर काम करते हैं। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंध में मन्वंतर का वर्णन किया गया है। 14वें अध्याय में इसका स्पष्ट वर्णन है। महाराज परीक्षित पूछे हैं सुखदेव गोस्वामी से कि मन्वंतरेषु भगवान यथा मन्वादयस्त्रि में जत कर्मणि जत कर्मणि जे जेन वा नियुक्ता तद बदस्व में, हे भगवान कृपा करके बताइए कि प्रत्येक मन्वंतर में मनु महाराज जी के शासन काल में कौन किस काम को संभालता है और किसके द्वारा नियुक्त होकर। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं मनवो मनुपुत्राश्च मुनयश्च महीपते मनुगण और मनु के पुत्रगण तथा मुनि सप्तर्षि लोग, ये सभी पुरुष शासन है, ये सभी भगवान के आज्ञा के अनुसार काम करते हैं, भगवान के अधीन रह करके संभालते हैं। एक मन्वंतर में 6 विभाग होता है, ये ब्रह्मांड की सरकार है। प्रभुपाद जी उस अध्याय का नाम दिए हैं द सिस्टम ऑफ यूनिवर्सल मैनेजमेंट। तो 6 विभाग है, मनु और दूसरा विभाग है मनु के पुत्रगण, इसके साथ देवता और देवताओं के लीडर इंद्र, और सप्तर्षि ब्राह्मण जो मैनेजमेंट में विधान बनाते हैं, शास्त्र पढ़ करके देते हैं, सप्तर्षि कहा गया है। श्रीमद् भागवत अष्टम स्कंध के 13वें अध्याय में ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु जो बदलते हैं तो उनका जिक्र किया गया है। एक मनु का शासन काल कम से कम 71 चतुर्युग होता है, 71 बार चारों युग बीतेंगे बीतते हैं तब मनु महाराज राज छोड़ देते हैं। इस समय जो मन्वंतर चल रहा है, इस मन्वंतर में मनु महाराज हैं विवस्वान के पुत्र, भगवान सूर्य के पुत्र हैं, इसलिए इनको वैवस्वत मन्वंतर कहा जाता है। इस मन्वंतर में भगवान ने अवतार लिया माता अदिति के गर्भ से, और बलि महाराज से 3 पग भूमि मांगा, इस मन्वंतर में ये लीला हुई। 7वां मन्वंतर है और सुखदेव गोस्वामी पीछे के 6 मन्वंतर का वर्णन किए और आगे जो सात होंगे सात मनवंतर उसका भी वर्णन कर दिए। बहुत परफेक्ट व्यवस्था है भगवान की। इस मनवंतर के बाद कौन मनु बनेगा भगवान ने सेलेक्ट कर दिया है। ब्रह्मांड की सरकार में इलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन होता है। भगवान के द्वारा ये सभी अधिकारी नियुक्त होते हैं। तो निर्धारित है करोड़ों वर्ष पहले से, ये पता है कि इसके बाद ये मनु बनेंगे, ये इंद्र बनेंगे, ये सप्तर्षि लोग बनेंगे, ब्राह्मणों की वह सभा जो मनु महाराज को या इस सरकार को गाइड करती है, वे लोग शासन में डायरेक्ट भाग नहीं लेते हैं सप्तर्षि लोग, लेकिन विचारात्मक निर्णय देते हैं कि यह कार्य होना चाहिए, यह कार्य नहीं होना चाहिए। तो इस संसार को चलाने में मुख्य भूमिका है देवताओं की। देवता लोग भगवान के द्वारा ऑथराइज्ड व्यक्ति हैं, अधिकृत पद है उनका, विविध पद पर वे रहते हैं और भगवान के निर्देशन में कार्य करते हैं, वर्तन्ते अनुजुगम, युग के अनुसार। कौन किस कार्य में लगता है इसका वर्णन सुखदेव जी किए हैं। एक मनवंतर में उस मनु महाराज के शासन काल में जो सरकार होती है उस सरकार को संभालने के लिए भगवान का अवतार होता है, तो उसको मनवंतरावतार कहते हैं। प्रथम मनु स्वयंभू मनु हुए ब्रह्मा जी के पुत्र, तो उनके समय में भगवान यज्ञ के रूप में अवतार लिए, यज्ञ, और उन्होंने असुरों का वध किया और मनु महाराज की रक्षा किया। तो इस तरह प्रत्येक मनवंतर में भगवान का एक अवतार होता है। तो उन अवतारों के द्वारा प्रेरित होकर के मनु, चाहे मनु के पुत्र, चाहे देवता ऋषि शासन करते हैं, पालन करते हैं इस जगत का। तो बड़ी ही सुंदर व्यवस्था है और भगवान काल रूप से इसको देखते रहते हैं। भगवान में और भगवान के इच्छा में, संकल्प में कोई अंतर नहीं है। भगवान का संकल्प ही काल है। तो सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहता है। हम लोग कभी कभी चिंतित हो जाते हैं कि अभी कलयुग तो बहुत कम दिन बीता है, ये कैसे चलेगा संसार। इस तरह से धर्म का ह्रास होगा तो यह संसार नहीं चल पाएगा। लेकिन भगवान की दृष्टि में ये कुछ भी नहीं समय बीता है। 5000 वर्ष कलयुग बीता है तो ये बहुत नहीं है। कई बार कलयुग आया एक मनु के काल में 71 बार कलयुग आता है और वो बीत ही जाता है, जैसे सतयुग आता है, सतयुग के बाद त्रेता, उसके बाद द्वापर, कलि, तो चारों युग ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 वर्ष बार बीतते हैं। भगवत गीता में भगवान ने इसको कहा है, सहस्र युग पर्यंत माहुष तद ब्रह्मणो दिनम। विद्वान लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग का होता है। 1000 चतुर्युग चारों युगों का सेठ, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलि युग। तो सातवें मन्वंतर में ये 28वां चतुर्युगी चल रहा है। इस चतुर्युगी में जो द्वापर आया उसी में भगवान स्वयं आए, और जो कलि चल रहा है तो इस कलयुग में भी भगवान आए। जब आए तो उसी समय युगावतार का समय था, तो युगावतार भगवान में ही विलीन होकर आया। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं साक्षात श्री कृष्ण हैं और उनके भीतर ही युगावतार आ गए, युग का धर्म प्रवर्तन करने के लिए। युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन, तो भगवान ने स्वयं ही कीर्तन किया और कराया, इस तरह उन्होंने इसको इसकी संस्थापना की। सुखदेव गोस्वामी ने कहा है कि चतुर्युगान्ते कालेन ग्रस्तान श्रुति गणान यथा ऋषयो अपश्यन धर्मम जतो धर्मस जतो धर्मम धर्म सनातन। चारों युग के अंत में ये वेद शास्त्र लुप्त हो जाते हैं। चारों युग में पहले तो सतयुग, इसके बाद त्रेता, द्वापर सब आते हैं और कलयुग आता है। कलयुग के अंत में चारों युग का अंत माना गया है, कलयुग ही अंतिम युग है। तो कलयुग का अंत होते होते श्रुतियां लुप्त हो जाती हैं, वेद शास्त्र लुप्त हो जाते हैं। श्रील प्रभुपाद उसका अनुवाद किए हैं मिस यूज्ड, वेद शास्त्र का मिस यूज होने लगता है, ठीक से लोग तात्पर्य समझते नहीं हैं, इस तरह से गड़बड़ हो जाती है। तो भगवान उसको फिर चालू करते हैं, जैसा कि 4वें अध्याय में भगवत गीता के भगवान कहते हैं, इमं विवस्वते योगम पोक्तवान हम अव्ययम। विवस्वान मनवे प्राह मनु रिक्षवा कवे बर्वे। यह पुरातन सनातन योग, योग मतलब यह दिव्य ज्ञान, मैं बहुत वर्ष पहले सृष्टि के शुरू में विवस्वान को दिया था। विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को दिया, यही मनु जो वर्तमान मनु है सतव्रत महाराज, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। एवं परंपरा प्राप्तम इम राजर्षयो विदुः, इस प्रकार से परंपरा में यह ज्ञान आता रहा। और राजर्षि लोग इस ज्ञान को जानते थे। लेकिन स काले नेह महता योगो नष्ट परम तप। लेकिन बहुत काल बीत जाने से महता काले न यह योग, यह कर्म का सिद्धांत, यह भक्ति, ये नष्ट हो गया। जनता में इसका प्रचार नहीं रहा और गलत रूप से प्रचार होने लगा, तो भगवान उसको कह रहे हैं ये नष्ट ही हो गया। नष्ट का अर्थ होता है अदृश्य, रहा नहीं। अब मैं पुनः इसकी शुरुआत कर रहा हूं तुमसे। तो भगवान ने अर्जुन को अपना शिष्य बनाया और उनको ये ज्ञान दिया। ये संसार में ज्ञान नष्ट होता है, शास्त्र का मर्म ठीक से लोग नहीं समझ पाते हैं, तो भगवान उसको फिर से प्रारंभ करते हैं। ये भगवान की व्यवस्था है। जब इस भगवद गीता के अर्थ को लोग ठीक से नहीं समझते और मनमानी व्याख्या करने लगे, तब भगवान ने श्रील प्रभुपाद जी को भेजा गीता एज इट इज प्रस्तुत करने के लिए। तो भगवान की व्यवस्था है और ये चलता रहता है। श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे कि यह भगवत गीता एज इट इज, ये मेरी पुस्तकें 10,000 वर्ष के लिए मानवता के संविधान के ग्रंथ होंगे। 10,000 वर्ष तक इनका प्रचार रहेगा। इसका अर्थ है कि 10,000 वर्ष के बाद इनका प्रभाव धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा। जो भी हो, मैं ये कह रहा था यह काल मनुष्यों की स्मृति को, उनके जीवन को खंडित करता रहता है, लेकिन भगवान के लिए यह बहुत नहीं है। और कुछ भी होता है तो भगवान देखते हैं, और धर्म का ह्रास होता है तो वे कहते हैं जब जब धर्म का ह्रास होता है तब तब मैं आता हूं धर्म की स्थापना के लिए। तो भगवान उपाय करते हैं, अपना प्रतिनिधि भेजे या स्वयं आवे। किस तरह से शास्त्र वेद वे देते हैं इसका वर्णन किया गया है। ज्ञानम चान जुगम ब्रूते हरि सिद्ध स्वरूप धृक। भगवान सिद्ध का रूप धारण करके ज्ञान का उपदेश करते हैं। जैसे सनक सनंदन आदि का रूप धारण करके भगवान ने ज्ञान दिया, और इसी रूप धरा कर्मा जोगम जोगेश रूप धृक, और इसी का रूप धारण करके भगवान ने कर्म मार्ग का उपदेश किया। जैसे जागवल्क ऋषि के रूप में जन्म लेकर उन्होंने कर्म करने को सिखाया, और योग सिखाया दत्तात्रेय के रूप में योगी बन करके। इसी प्रकार से सरगम प्रजेश रूपेण प्रजापति के रूप में प्रकट होकर के वे प्रजा की सृष्टि किए, मरीचि के रूप में जन्म लेकर के। तो ज्ञान देना, कर्म देना और योग देना ये भगवान का काम है, वे करते ही हैं। और इस काम के लिए उनकी निश्चित योजना है जो कभी फेल नहीं हो सकता है, और बहुत सुंदर व्यवस्था है। पालयन्ति प्रजा पाला जावदंतम विभागस। जब तक मनु महाराज जी का शासन रहता है तब तक बहुत से प्रजापालक राजा प्रकट होकर के लोक का पालन करते हैं। बहुत से देवता, शक्तिशाली देवता इस काम में नियुक्त किए गए, जैसे इंद्र स्वर्ग के सम्राट हैं सब देवताओं के ऊपर। ब्रह्मा जी के बाद इंद्र का पद है, तो उनका काम है स्वर्ग के ऐश्वर्य को भोगना, और इसके साथ वे वर्षा के अधिदेवता हैं, वर्षा करते हैं। वर्षा से ही सबका जीवन सुख से चल सकता है। जीवन की सफलता तब होगी जब इस जीवन में व्यक्ति सुख और शांति से जी ले। इसके साथ है मुक्ति के पथ पर चल दे, संसार बंधन से वो छूटे, छूट जाए तो जीवन की सफलता है। दो तरह का जीवन चाहिए, दो तरह से। इस जीवन में सुख शांति, खाने पीने के लिए अच्छी व्यवस्था हो, शरीर स्वस्थ हो, जो भी आवश्यकता हो उसे मिल जाए, और ये सब वस्तुएं हमको संसार से मोक्ष दिलाने में समर्थ हो। तो इंद्र इसमें बहुत सहयोग करते हैं। वर्षा विभाग के वे अधिदेवता हैं, तो कामम लोके प्रवर्षते, यथेष्ट वर्षा करते हैं, और वर्षा से ही भोज्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं। जितना भी अन्न, फल, दूध, घास जो भी हो रहा है वर्षा से होता है। वर्षा से जो वस्तुएं उत्पन्न होती हैं वही खा करके हम लोग जीवित रहते हैं। जो जीने के लिए जरूरी चीज है, भोजन पदार्थ या कपड़ा आदि, सब वर्षा से होते हैं। यहां तक कि समुद्र में मोती बनता है, या पर्वतों की खान में जो खनिज द्रव्य होते हैं, धातु उत्पन्न होते हैं, वो भी वर्षा के कारण। यदि वर्षा न हो तो सोना, चांदी, हीरा आदि भी ये नहीं होंगे। इंद्र इन सब के उत्पादन के लिए वर्षा की बहुत जरूरत है और सबसे आवश्यक है भोजन। भोजन सबके लिए जरूरी है, पशु पक्षी मनुष्य सब भोजन करते हैं और सबका भोजन वर्षा पर निर्भर करता है। इसी प्रकार वायु देवता है, वायु को कंट्रोल करने वाले, तो यथेष्ट हवा बहे, हवा में ही हम सांस लेकर जीवित रहते हैं, तो ये हवा देने के लिए एक देवता है जिन्हें वायु देवता कहते हैं। इसके साथ प्रकाश देने के लिए चाहिए, प्रकाश की बहुत जरूरत है। तो हम लोग बिजली जलाते हैं, ये अंधकार दूर करने के लिए एक व्यवस्था है। यदि यहाँ प्रकाश की व्यवस्था न हो तो पूरा ब्रह्मांड घोर अंधकार में डूबा रहेगा। जो भी यहाँ प्रकाश है सब कृत्रिम प्रकाश है। यदि व्यवस्था न हो, कोई दीपक न हो, टॉर्च न हो या सूर्य चंद्र न हो, तो यहाँ इस जगत की स्वाभाविक स्थिति है घोर तमस, घोर अंधकार। और ऐसा अंधकार जिसमें अपना हाथ भी दिखाई नहीं पड़ सकता है। तो ऐसे अंधकार में हम क्या काम करेंगे, कैसे जिएंगे और भजन भी कैसे कर पाएंगे? कोई ये कहे कि जिएंगे अंधकार में भी भजन कर सकते हैं, लेकिन लगातार अंधकार रहे तो जीना भी मुश्किल हो जाएगा। तो प्रकाश देने वाले एक देवता है जिन्हें विवस्वान कहा जाता है, भगवान सूर्य, और इसके साथ चंद्र देवता, चंद्रमा। सूर्य के अस्त होने पर चंद्रमा प्रकाश देने लगते हैं और सूर्य के प्रकाश जैसा तीखा नहीं होता है, बहुत कूलिंग लाइट, बहुत सुंदर प्रकाश है चंद्रमा का। वही सब औषधियों को, फल फूल अनाज को पोषते हैं। कैसी सुंदर व्यवस्था है और रेगुलर व्यवस्था है। सूर्य डूबा तो चंद्रमा आ गया आकाश। और सूर्य भी अपने रूटीन के अनुसार कुछ देर के लिए तिरोहित हो जाता है, हमारे नेत्रों से तिरोहित हो जाता है। तो मनुष्यों को, सब जीवों को विश्राम मिलता है। सो लेते हैं, वो भी जरूरी है। आयुर्वेद में डॉक्टर लोग हमेशा पूछते हैं नींद अच्छी आती है ना, नींद अच्छा आना ये जरूरी है। तो भगवान की व्यवस्था देखिए, सूर्य अस्त हो जाते हैं, उस समय हम कोई काम नहीं कर सकते, तो विश्राम करते हैं, निद्रा लेते हैं। तो रात्रि में निद्रा लेना ये ठीक है, रात्रि में जगना ठीक नहीं है। और दिन में सोना ठीक नहीं है, यह सब भगवान की परफेक्ट व्यवस्था है। जो व्यक्ति इन नियमों को तोड़ता है तो वो स्वस्थ नहीं रह सकता। तो मैं ये प्रसंग पर मैं बोल रहा हूं कि ये भगवान की व्यवस्था है और संसार को सुख से चलाने के लिए भगवान ने बड़े बड़े देवताओं को नियुक्त कर दिया है और वे अपना काम देखते रहते हैं, परंतु सब समय उन्हें ध्यान रहता है कि भगवान की यह आज्ञा है, उनकी आज्ञा के अनुसार काम करते हैं। जद भयात, भगवान के भय से। यहां भय का अर्थ है प्रेम, प्रेम से, श्रद्धा से। भय का अर्थ बहुत डर करना ही। भगवान का अनुशासन मानते हैं, स्वीकार करते हैं, शिरोधार्य करते हैं और कदाचित वे आज्ञा नहीं माने तो भगवान उन्हें डिसमिस कर देते हैं। भगवान की आज्ञा पालन करने में ही देवताओं की शोभा है और इस तरह मनुष्य की शोभा है। भगवत गीता में भगवान ने बताया है दो लोगों की सृष्टि किए भगवान, देवता और मनुष्यों की, और मनुष्यों को उन्होंने कहा सहजज्ञ प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति। सृष्टि किए मनुष्य की और देवताओं की, और मनुष्य से भगवान ने कहा पुरा उवाच प्रजापति। प्रजापति स्वयं भगवान विष्णु ने कहा अनेना प्रसविश्वध्वम, यज्ञ के साथ प्रजा की सृष्टि किए, मनुष्य की सृष्टि किए, यज्ञ उसके कर्तव्य कर्म को भी बताए। यज्ञ का अर्थ है प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज, नियत कर्म जो शास्त्र में कहा गया है करने के लिए, तो वो यज्ञ है। उस यज्ञ के साथ भगवान ने मनुष्यों की सृष्टि किया और उनको कहा अनेना प्रसविश्वध्वम, इस यज्ञ से तुम समृद्ध बनोगे। जब यज्ञ करोगे तो तुम आनंद से जी सकोगे और आगे भी जीवन में, जीवन के बाद भी सुख से रहोगे। देवान भावयता नेना अनेना देवान भावयता, इस यज्ञ से देवताओं को प्रसन्न रखो। भगवान स्पष्ट बता रहे हैं कि अनेना इस यज्ञ द्वारा देवताओं को पुष्ट करो, प्रसन्न करो। और ते देवा भावयन्तु वः, और वे देवता तुमको सुखी रखेंगे। परस्परम भावयन्तः परम श्रेयम अवाप्स्यथ। इस प्रकार मनुष्य समाज और देव समाज परस्पर सहयोग द्वारा, कोऑपरेशन द्वारा परम श्रेय को प्राप्त करोगे। तो भगवान कितनी सुंदर बात बता रहे हैं, देवताओं के साथ इस ब्रह्मांड के मैनेजमेंट के साथ हमें सहकारिता देना है, सहयोग देना है। देवताओं का सुख, देवताओं का भोग मनुष्य के द्वारा किए गए यज्ञ में निहित है। अगर मनुष्य यज्ञ करते हैं तो देवता खुश रहते हैं। इष्टन भोगान है वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता, यज्ञ से प्रसन्न होकर के देवता तुम्हारी समस्त इच्छित वस्तुओं को देंगे। इष्टन भोगान दास्यन्त देंगे। और इस प्रकार देवताओं के द्वारा प्राप्त करके वस्तुएं तुम सुख से जियोगे। ये भगवान ने कहा सृष्टि के प्रारंभ में। तो देवताओं के को दिए बिना हम जो कुछ उपभोग करते हैं तो भगवान कहते हैं यदि देवताओं को दिए बिना हम कुछ खाते हैं तो हम चोर हैं। सीधा चोर शब्द का प्रयोग करते हैं। सस्तेन तो चोर है। बताइए जिसको भगवान चोर कहें वो कितना नीचा व्यक्ति है। भगवान कहते हैं चोर है। यज्ञ शिष्टा सिना संत मुचिन्ते सर्व किल विषय। और यज्ञ से बचे हुए उच्छिष्ट को जो खाते हैं संत लोग मेरे भक्त तो सब पाप से मुक्त हो जाते हैं। देवताओं को दे करके जो प्रसाद बचे वह खाना चाहिए। कोई भी वस्तु जो देवताओं ने दिया है तो उनको दे करके तब जीवन में उपयोग करना चाहिए। और देवताओं को देना अंततः भगवान को ही देना माना जाता है। तय दत्ता न प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेनेव सः। दत्तान तय दत्तान जो वस्तुएं हम लोगों को देवताओं द्वारा मिली हैं, भगवान द्वारा मिली हैं, इन वस्तुओं को एभ्यः अप्रदायेभ्यः अप्रदाय इनको न दे करके कोई भोगता है तो स्तेना वो चोर है। बड़ी ही सुंदर बात भगवान बता रहे हैं। वे चाहते हैं कि जीवों में विशेष करके देवताओं और मनुष्यों में एक कोऑपरेशन रहे। यज्ञ बहुत जरूरी है, यज्ञ करना चाहिए। भगवान गीता में कहते हैं कि जो यज्ञ नहीं करता है उसके लिए न तो ये लोक है और न परलोक है, वो किसी काम का नहीं है। यज्ञ करना चाहिए और यज्ञ अपनी शक्ति के अनुसार और युग के अनुसार समय के अनुसार होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी लिखे हैं कि सामान्य मनुष्य के लिए ये बड़ा बड़ा यज्ञ करना ये असंभव है, लेकिन पंच महायज्ञ कोई भी कर सकता है। महायज्ञ जिनको बलि वैष्णदेव भी कहा जाता है, पंच महायज्ञ जिसमें है भूत यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितर यज्ञ, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ, मनुष्य यज्ञ। तो ये यज्ञ करना चाहिए, ये पांच महायज्ञ हैं। जैसे भूत यज्ञ है, अनेक जीवों को आशा लगी रहती है कि हमको ये व्यक्ति देगा। विशेष करके गृहस्थ को ये यज्ञ करना चाहिए जरूर, ऐसे सन्यासी को भी करना चाहिए, परंतु गृहस्थ के लिए तो अनिवार्य है। कोई चीज आप पकाते हैं तो अगर केवल अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए पका रहे हैं, अपने परिवार के लिए बस, तो ऐसा करने वाला व्यक्ति भुंजते ते त्वघम पापा, ये पापी लोग अघ खाते हैं। जो अपने लिए पकाते हैं, भगवान गीता में कहते हैं अपने लिए कोई पकाता है तो पाप खाता है। तो यज्ञ है कि जब हम दूसरे के लिए भोजन पकाएं, दूसरे को खिलाने के लिए। यज्ञ सब लोग कैसे करेंगे, तो जो जहां है, जिस आश्रम में है या जिस वर्ण में है, तो उसके अनुसार बहुत यज्ञों का विधान है, करे। जैसे हम लोग भक्त हैं, मंदिर में रहते हैं, तो कोई प्रश्न करेगा हम कैसे यज्ञ करें। हम यज्ञ ऐसे करें कि मंदिर में कोई आवे, कोई अतिथि आवे, कोई व्यक्ति आवे, तो हम उसे प्रसाद दें। प्रसाद देना ही यज्ञ है। और प्रसाद बेचे भी तो उसका जितना खर्च लगा है उतना ही लें, उसको व्यापार का रूप ना बनाने, उसको बिना नफा लिए हम उसको देते हैं तो यह यज्ञ है। प्रसाद देना मुख्य है यज्ञ। आपने देखा होगा भारतवर्ष में गांव में ये प्रथा प्रचलित है, भोजन के पहले कई ऐसे पुण्यात्मा पुरुष हैं जो पक्षियों को, विशेषकर कौआ आदि को देखते हैं और कुछ डाल देते हैं खाने के लिए, पक्षियों को डाल देते हैं, और उसके बाद वे खाएं तो खाना पाप को नष्ट कर देता है। पर दूसरे को देना चाहिए, जैसे कुत्ता है। और सबसे विशिष्ट पात्र कौन है जिसके द्वारा समाज का बहुत उपकार होता है, सबसे पहले गौ है। गौ है जिसको देना चाहिए, इसीलिए गोग्रास निकालने की प्रथा है, गाय के लिए भोजन देना है। तो आदमी कहीं भी रह कर सकता है, यहां तक कि एक सन्यासी भी खाने के पहले वो दे सकता है। कोई कहे कि हमारे खाने भर है मैं क्या दूंगा, नहीं। एक नीतिकार कहते हैं कि यदि एक ग्रास भोजन तुमको सुलभ है तो आधा ग्रास दे दो, आधा कवर दे देना चाहिए। इससे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। एक बार की सत्य घटना है, पंढरपुर में नामदेव एक महात्मा रहते थे, तो वे एक बार भगवान के लिए रोटी पकाए और रोटी रह करके जो किचन में ही थोड़ा काम के लिए कोई वस्तु लेने चले गए, घी लेने गए। तब तक उसी समय एक कुत्ता आया और चार पांच रोटी पकड़ करके मुंह में और चल दिया, तो नामदेव जी पीछे से पुकारने लगे। उनकी भावना थी कि हमारे पंढरीनाथ ही कुत्ते के रूप में आ गए हैं, तो वे पुकारने लगे, हे भगवान आप रुकिए रुकिए, वो कुत्ता भाग रहा था, आप रुकिए, ये सूखी रोटी है, घी लगा देने दीजिए, ये पुकार रहे थे, ये घी लगा देने दीजिए तब खाइएगा। वो अंत में वो बड़ी दौड़ते रहे, कुत्ता भागता रहा, लेकिन अंत में वो तो भक्त की निष्ठा थी, भगवान प्रकट हो गए चतुर्भुज रूप में, वो कुत्ता का शरीर ही भगवान के रूप में बदल गया, तो भगवान दर्शन दिए इस तरह से। एक महात्मा ऐसे थे जो किसी सरोवर के तट पर खाते थे, तो एक कवर वे खाते थे और एक कवर कुत्ता के लिए फेंक देते थे, कहते इतना ही पर अधिकार है। और नारद जी ने महाराज युधिष्ठिर की राजसूय सभा में कहा है कि जावत भ्रियत जठरम तावत स्वत्वम ही देहिना, अधिकम यो भी मन्य तो सस्तेनो दंडम अर्हति। महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि जितने से पेट भर जाए मनुष्य का उतने ही पर अधिकार है, और उससे अधिक जो मानता है वो चोर है, उसको दंड मिलना चाहिए। ये राजसूय सभा में बात कही जा रही है, किसी को ये अधिकार नहीं है कि वो पेट से ज्यादा रखे और बोरा में कस करके या बहुत बैंक में पैसा रखे या बहुत स्टोर में रखे अनाज, इस पर अधिकार नहीं है। अगर ऐसा करता है तो चोर है, जितना से पेट भर जाए बस उतना ही अधिकार है, इससे अधिक पर अधिकार नहीं। ये भगवान के भक्त बताए हैं नारद जी, और वो भी राजा से कह रहे हैं कि वो चोर है और उसको दंड मिलना चाहिए। सस्तेनो दंडम अर्हति, तो हमारा अधिकार है जितने से हमारा पेट भर जाए, और पेट मतलब ये जो एक बीता का पेट है, केवल यह नहीं कि पूरा पेट बढ़ा ले। कई लोग समझते हैं कि अभी तो हमारे लिए हुआ ही नहीं, अभी हम और खाना है, और इकट्ठा करना है, और इकट्ठा करना है, संग्रह नहीं करना है। संग्रह से दुख होता है। एक बार ब्रह्मा जी के पास देवता, मनुष्य और दैत्य, ये जुटे, इनके प्रतिनिधि लोग आए, तो ब्रह्मा जी से सब लोग कहे कि आप हमारे हित के लिए कुछ उपदेश कीजिए, ये उपनिषद की कथा है। तो ब्रह्मा जी ध्यान में थे, और ध्यान से उठे तो उनको समय नहीं था क्या, वो केवल एक सब अक्षर बोले द, और उन्होंने इशारा किया कि हो गया उपदेश द, तो इसका क्या मतलब हुआ। तो ब्रह्मा जी बारी बारी से पूछने लगे समझ लिए, तो देवताओं से ब्रह्मा जी ने पूछा समझ लिए हमारा इंस्ट्रक्शन उपदेश, तो कहे कि हाँ। क्या, तो देवताओं ने सोचा कि हम इंद्रियों के भोगों में बहुत ज्यादा रहते हैं, तो द का अर्थ ब्रह्मा जी हमें यह सिखा रहे हैं कि दमन करो, इंद्रियों का दमन करो। तो उन्होंने कहा कि हमने दमन करना सीखा, तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक सीखा। तो इसके बाद असुरों से पूछे, तो असुरों में बहुत हिंसा की भावना रहती है, मार काट करते हैं, तो उन्होंने सीखा कि ब्रह्मा जी हमें दया सिखा रहे हैं। द केवल कहे लेकिन उन्होंने सीखा कि हमें दया करनी चाहिए। तो ब्रह्मा जी उनसे पूछे क्या सीखे, तो सब लोग हाथ उठाकर कहे दया करना चाहिए, हम लोग ये सीखे। तब ब्रह्मा जी ने कहा ठीक सीखे, और मनुष्यों से फिर पूछे तुम लोग क्या सीखे। तो ये भी इनको भी द उपदेश मिला था, तो इन्होंने सीखा, ये सोचे कि ब्रह्मा जी हमें सिखा रहे हैं, हम लोग बहुत संग्रही हैं मनुष्य, कोई चीज इकट्ठा करना चाहते हैं, बरसों भोगना चाहते हैं। तो ब्रह्मा जी की बात को मनुष्यों ने स्वीकार किया कि ब्रह्मा जी हमें सिखा रहे हैं द मतलब दो, दान देने के लिए सिखा रहे हैं ब्रह्मा जी, हम लोगों को दान देने के लिए सिखा रहे हैं, तो हम लोगों को संग्रह नहीं करना चाहिए। मनुष्यों में ये बहुत आदत है, भविष्य की चिंता से वे संग्रह करते जाते हैं करते जाते हैं, और अंत में सब छोड़कर मर जाते हैं। तो जीवन जब तक है तब तक देना चाहिए, एक ग्रास है भोजन तो आधा ग्रास दे दे, ये ब्रह्मा जी की शिक्षा है मनुष्यों के लिए। द तो यह द ही यज्ञ है, सभी प्राणियों को अपनी शक्ति भर देते रहना चाहिए, जितना दे सके, मीठी वाणी भी बोलना देना है, जल देना देना है। ऐसा कहा गया है कि सज्जनों के यहाँ तीन चीज की कमी नहीं होती है, जल की, अन्न की, और कदाचित अन्न की कमी भी हो जाए तो सुभाषितम, जलम अन्नम सुभाषितम, जल कोई आवे तो उसको पानी देना चाहिए पीने के लिए, और अगर शक्ति है तो अन्नम भोजन देना चाहिए, और नहीं तो सुभाषितम सुंदर भाषण की क्या कमी हो सकती है, बचने किम दरिद्रता है। आप आइए बैठिए, आप कहाँ से आ रहे हैं, यह कह करके उसको संतुष्ट किया जा सकता है किसी जीव को, ऐसा नहीं हटो हटो तुम यहां क्यों आ गए, तुम यहां आने लायक नहीं हो, ये ऐसे कभी नहीं बोलना चाहिए। भगवान सबके हृदय में है, और पता नहीं कब कौन सी वस्तु को स्वीकार करने के लिए वे आ गए। दया सर्वभूतेषु। तो भगवान ने जिन लोगों को बहुत बड़ा पद दिया है विश्व को संभालने का, मनुष्य की सारी आवश्यकताओं को देने का, तो उनका समादर होना चाहिए। और भगवान को कोई वस्तु दे करके प्रसाद के रूप में ग्रहण करनी चाहिए कि सबके मूल दाता भगवान कृष्ण हैं, वही देवताओं को दिए हैं तब देवता हम लोगों को देते हैं। भगवान का उपकार, भगवान का एहसान मानना चाहिए। और सभी देवताओं और मनुष्यों से प्रेम करना चाहिए, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। इस अध्याय में भगवान कपिल देव मुख्य बात यही कहे और इसीलिए जीवों के कैटेगरी को बांट दिए हैं। जीवा श्रेष्ठा है जीवा नाम अनेक प्रकार से, और सबसे महत्वपूर्ण जीव उसको बताए हैं जो मेरा भक्त है, जो मेरा भक्त है। भगवान के भक्त का विशेष आदर करना चाहिए, उसको मधुर वाणी से, जल से, आसन से, भोजन से, बहुत तरह से सत्कार करना चाहिए। इस तरह श्रुति में, वेद में भगवान के बहुत से उपदेश हैं, तो भगवान के उपदेशों के अनुसार ही कर्म करना चाहिए। ब्रह्माक्षर समुद्भव, यह ब्रह्म, यह वेद अविनाशी भगवान से, पुरुषोत्तम भगवान से निकला है, उनके सांस से वेद निकला है। अस्य महत्व वा निःश्वसितम एतद् ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद। भगवान के सांस से वेद निकला है, भगवान के किसी भी अंग में अन्य समस्त अंगों को करने की शक्ति है। अंगानि जस्य सकलेन्द्रिय मृत्युमन्ति, वे सांस में बोल सकते हैं, वे सांस लिए तो उससे वेद प्रकट हुआ, वे आंख से प्रकृति को गर्भवती कर दिए, जीवों को गर्भस्थ कर दिए प्रकृति के भीतर, उनकी दृष्टि में ऐसे शक्ति है। तो भगवान ने जैसा उपदेश किया है भगवद गीता में और भी वैदिक ग्रंथों में, उसको पढ़ करके अपने लिए कर्तव्य निश्चित कर लेना चाहिए कि हमें यही करना है। कोई काम हम यदि भगवान की इच्छा के विरुद्ध करेंगे तो कर्म बंधन होगा। यज्ञार्थ कर्मोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। हमें दिन पर दिन ऐसे जीवन जीना है कि हम मोक्ष के तरफ बढ़ें, थोड़ा ही बढ़ें लेकिन बढ़ें जरूर। बढ़ते बढ़ते ये सारी सृष्टि उसी के लिए रची गई है कि जीव धीरे धीरे उन्नत योनि में जाए और उन्नत योनि में जाते जाते अंत में वैकुंठ चला जाए, मोक्ष प्राप्त करे, इसी के लिए सृष्टि है। यह सृष्टि केवल खाने पीने आदि के लिए नहीं है। सृष्टि भगवान को पाने के लिए है, और उसका क्रम है, तो बड़ी सावधानी से और बड़े धैर्य से एक काम करते जाना चाहिए। हम लोग भगवान का प्रसाद खाएंगे, त्याग से रहेंगे और महामंत्र का जप करेंगे। इस युग के अनुसार सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है महामंत्र का कीर्तन। यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंत ही सुमेधस। तो इस संकीर्तन यज्ञ को करना चाहिए, इससे हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। जो अनादि काल से कर्म बंधन लगा हुआ है, जो हमें मोक्ष नहीं लेने देता है, जो मोक्ष का प्रतिबंधक है, वह कर्म भी समाप्त हो जाएगा भगवान का प्रसाद खाने से और नाम जप करने से। बलदेव विद्याभूषण जी जो भगवत गीता के बहुत बड़े टीकाकार हैं, वे इस बात को कहते हैं, यज्ञ शिष्टासिना संतम मुचंते सर्वकिल विषय, इसकी व्याख्या में कहते हैं संत शब्द का अर्थ है विष्णु का भक्त। विष्णु का भक्त भगवान का प्रसाद खाते हैं और वे सब प्रकार के कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इस तरह हमें सभी जीवों के प्रति सौहार्द भाव रखना चाहिए और देवताओं के प्रति कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, कभी द्वेष नहीं करना चाहिए। वे भगवान के प्रिय हैं, भगवान के प्रतिनिधि हैं विविध पदों पर, तो उनके आशीर्वाद की भी कामना करनी चाहिए। हमें अपना काम करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए। यदि हम भगवान का कीर्तन करेंगे तो देवता प्रसन्न रहेंगे, और प्रसन्न रहेंगे तबे प्रकाश, वर्षा, हवा आदि बहुत अच्छी तरह से देंगे और हम सुख शांति से जिएंगे और भगवान को पाने के लिए प्रयास करेंगे। यही बात भगवान कपिल देव इस श्लोक में बता रहे हैं। गुणाभिमानिनो देवा सर्गा विश्वस जद भया वर्तन तेन जुगम जैसा बस ए तत्चराचरम। यह चराचर विश्व देवताओं के अधीन है और जो देवता देते हैं वो मनुष्य क्या देगा। जो देवता देते हैं कोई वैज्ञानिक या कोई कलाकार या कोई मिनिस्टर क्या देगा किसी को। जो वर्षा द्वारा वस्तुएं उत्पन्न होती हैं उसको हम किसी फैक्ट्री में नहीं बना पाएंगे। वर्षा से चावल होता है और चावल किसी फैक्ट्री में नहीं बनाया जा सकता है ना। प्रभुपाद जी कहते हैं चावल खेत में बनेगा और पानी से बनेगा, फैक्ट्री में चावल बनाने की कोई विधि नहीं है। वहां तो नट बोल्ट बनता है, तो नट बोल्ट खा करके जिएंगे क्या। तो जो देवता दिए हैं उसको ये लोग नहीं दे पाएंगे। और यदि अन्न न हो, फल दूध दही न हो, तो कंप्यूटर और रेडियो ये सब खा पी करके नहीं जिएंगे। इसलिए देवताओं का उपकार मानना चाहिए और सबसे बड़ा उपकार तो भगवान का है। वो तो परम सुहृद हैं जो हमको जिलाना चाहते हैं सुख से और चाहते हैं कि जीव हमको प्राप्त करे, मोक्ष प्राप्त करे, वैकुंठ जाए, कि भगवान के इस मिशन को समझना चाहिए। उसी में सहयोग देने के लिए, उसका परिवर्तन करने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। जय गौरांग, जय गौर हरि, जय श्रील प्रभुपाद।